मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत बस आप यही मान करके चले कि कुछ खबरें हैं, उनकी चर्चा मैं आप सबसे करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे आपको एक सूचना देनी है। यह सूचना मेरे पास भेजी है सौरभ सोनी जी ने। तो सबसे पहले तो सौरभ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सबकी ओर से कि उन्होंने एक जिम्मेदारी के तहत यह अनुरोध किया है मुझसे कि मैं यह सूचना आप सब तक पहुंचा दूं। तो मैं उनके शब्द को ज्यों के त्यों आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान से सुन ले। थोड़े से शब्द हैं, सर यूपीएससी के लिए अपडेटेड लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो रही है, अतः सभी विद्यार्थियों को सूचित कर दीजिए कि जिनके पास नए जाति प्रमाण पत्र नहीं है वे जल्द ही बनवा लें या अपडेट कर लें, अन्यथा अंतिम समय 25 फरवरी 2023 तक भी यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी समझ से अर्थ समझ में आ गया होगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, कि आप सबको अपने जाति प्रमाण पत्र को अपडेट कर लेना चाहिए। तो सौरभ, इस जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं बहुत बहुत आपको अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूं। अभी मैंने धन्यवाद की बात की, आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हो गया है और ध्वनि मत से पारित हो गया है। ध्वनि मत से पारित होने का मतलब है कि मतदान कराने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने देखा होगा पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा होता है, लाइव टेलीकास्ट अगर आपने देखा हो तो लोग अपनी मेज थपथपा देते हैं और उससे ये माना जाता है कि सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया गया, तो ध्वनि मत से पारित मान लिया जाता है। दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो दो बार संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। पहला तब जब पहली बार चुनाव होता है लोकसभा का और बैठक होती, तब वो संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं, और फिर हर साल जो वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है तब वे उसे संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। अभी हमारा बजट सेशन शुरू हुआ तो आप देखें कि राष्ट्रपति जी ने उसे संबोधित किया। जब राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं तो यह एक प्रकार से एक विशेष अकेजन होता है कि राष्ट्रपति जो हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं वो सदन में आए और जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको संबोधित किया। जब राष्ट्रपति संबोधित करते हैं तो उसमें भी अपने सरकार का लेखा जोखा देते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या किया है और आगे हम क्या करने वाले हैं। चूंकि वो पूरा का पूरा लेखा जोखा है तो इसीलिए स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति जी ने जो कुछ भी कहा है उस पर संसद में बहस होगी। आप देखें कि संसद में बकायदे बहस होती है, उसके लिए 2-3-4 दिन का समय निर्धारित कर दिया जाता है, सामान्यतः 3 दिन उसके लिए रखे जाते हैं, और बहस होने के बाद फिर राष्ट्रपति जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है कि धन्यवाद प्रस्ताव इसलिए कि आप संसद में आए और आपने हम लोगों को संबोधित किया, सरकार का लेखा जोखा हमारे सामने रखा, भविष्य की रूपरेखा हमें बताई, इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह है धन्यवाद प्रस्ताव। सामान्यतः यूं कह लीजिए कि यह एक प्रकार की औपचारिकता ही होती है, लेकिन एक जरूरी औपचारिकता है, एक डिग्निफाइड औपचारिकता है। अब देखिए कि दोनों सदन की संयुक्त बैठक हो रही है, लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या तो उससे आधे से भी कम ही होती है। राज्यसभा में हो सकता है कि जिस पार्टी की सरकार है उसका बहुमत न हो, लेकिन लोकसभा में तो बहुमत है ही। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर अगर मतदान की भी नौबत आई तो ये पारित हो जाएगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसे सरकार की एक प्रकार से हार जैसी मानी जाती है जो अच्छे सेंस में नहीं लिया जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब जो पार्टी सत्ता में है बहुत कम मार्जिन से वो बहुमत में हो और राज्यसभा में बहुत अधिक मार्जिन से वो अल्पमत में हो, तब सामान्यतः ऐसी स्थिति आ सकती है। लेकिन चूंकि यह एक औपचारिकता है, राष्ट्रपति जी के प्रति एक आभार व्यक्त करने का तरीका है, इसीलिए अपेक्षा की जाती है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह स्थिति नहीं आएगी। यह धन्यवाद प्रस्ताव। फ्रेंड्स, टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया है उसकी खबरें आप पढ़ रहे हैं, बहुत ही भयावह भूकंप है, मरने वालों की संख्या 11,000 से अधिक हो गई है। और देखिए कि कैसे तुरंत जैसे ही भूकंप की खबर आई हमारे यहां बकायदे बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और भारत सरकार ने तुरंत अपनी तरफ से जो भी सहायता उसको करनी है निर्णय लिया और रवाना कर दिया। हमारे वहां बकायदे चिकित्सा दल पहुंच गए हैं, हम सामग्री भेज रहे हैं, दवाइयां भेज रहे हैं और लगातार इस कोशिश में है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकें। यह इंटरनेशनल अफेयर का एक हिस्सा होता है कि अगर कोई भी देश इस तरह की मुसीबत में है और हम मदद करने की स्थिति में है तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें, और भारत इस मायने में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं रखता है। फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग की खबरें आप सुन रहे होंगे, हो सकता है कि आप थोड़ा सा चौंक गए हों कि यह हिंडनबर्ग की क्या खबरें हैं। याद करने की कोशिश कीजिए, यह हिंडनबर्ग क्या है। मान लीजिए कि प्री एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया कि हिंडनबर्ग क्या है, तो क्या आप उत्तर देने की स्थिति में हैं? सोचिए, शायद आपने सही सोच लिया है। आपको लग तो रहा होगा कि यार हिंडनबर्ग कहीं सुना तो है, लेकिन कहां सुना, कैसे सुना, लेकिन अगर आपने दिमाग पर दबाव डाला तो शायद आप सही उत्तर तक पहुंच जाएं। कैसे दबाव डालेंगे? हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग जब आप करेंगे तो पता लगेगा नहीं, अदाणी ग्रुप के मामले में हिंडनबर्ग की कुछ चर्चा हुई थी। फिर आपके दिमाग में कौन जाएगा कि हाँ, हिंडनबर्ग की ही रिपोर्ट के आधार पर अदाणी के शेयर इतने ज्यादा डाउन हुए थे, और आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आप थोड़ा सा ही पढ़ें, लेकिन ध्यान से पढ़ें, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। याद करने की जरूरत नहीं होती है, हर चीज को नोट करने की भी जरूरत नहीं होती है। ये हमारे दिमाग की विशेषता होती है कि अगर हमने थोड़ा भी ध्यान दे दिया तो वो फिर अपने ढंग से सही उत्तर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। हिंडनबर्ग के मामले में शायद आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जबकि ये तो बिल्कुल ताजा नाम है। आज बिजनेस स्टैंडर्ड में हिंडनबर्ग के लिए एक शब्द प्रयोग में किया गया है, अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म। अमेरिका की फर्म है और शॉर्ट सेलर फर्म है, तो ये शॉर्ट सेलर क्या हुआ? यदि आप शेयर मार्केट में जरा भी रुचि रखते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा जानना कि ये शॉर्ट सेलर क्या होता है। मुझे लगता है कि थोड़ी सी इस पर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हिंडनबर्ग है ये शॉर्ट सेलर फर्म है, तो हो सकता है कि हिंडनबर्ग पर सीधे ना पूछा जाए, शॉर्ट सेलर फर्म के बारे में पूछ लिया जाए और वो आपके सिलेबस का हिस्सा होगा, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का टर्म है। शॉर्ट सेलर फर्म, सेलर का मतलब तो आप समझते हैं, बेचने वाला, शॉर्ट सेलर। यहां थोड़ा सा रुक सकते हैं आप, जो सेल कर देता है, शॉर्ट सेल करता है, या शॉर्ट को कह दीजिए जो छोटी सेल करता है या लघु सेल करता है। तो देखिए ये होता क्या है, बहुत सिंपल टर्म में मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु है ए बी नाम की का एक शेयर है, वस्तु का शेयर ही कहना चाहिए क्योंकि ये शेयर मार्केट में होता है ज्यादातर। एक वस्तु है ए बी शेयर है और आपने उसे बेच दिया, पहले ही बेच दिया, 100 रुपए में बेच दिया, एक शेयर 100 रुपए में आपने बेच दिया, लेकिन आपके पास ये है नहीं, अभी आपके पास कुछ नहीं है, आपने बेच दिया कि भैया 100 शेयर मैं बेचता हूं आपको 100 रुपए की रेट से, और आपके पास शेयर नहीं है। आप ये उम्मीद रखते हैं कि यार कुछ समय बाद, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि हाँ एक महीने में मैं आपको एक शेयर दे दूंगा, एक डेट फिक्स हो गई कि 30 दिन के बाद मैं आपको ये शेयर दे दूंगा, आप ये मान करके चल रहे हैं कि एक महीने के अंदर इस शेयर की कीमत 90 रुपए हो जाएगी, 95 रुपए हो जाएगी, शेयर की कीमतें गिरेंगी, तो आप प्रतीक्षा करते हैं कि यार जब इस शेयर की कीमत गिरेगी तब मैं खरीद लूंगा। मान लीजिए कि 90 रुपए हो गए तो 90 रुपए में खरीद लूंगा, और आप पहले से बेच चुके हैं 100 रुपए में, तो अब वो शेयर गिर करके चाहे 50 रुपए का ही क्यों ना हो जाए, लेकिन जिसने वायदा किया है आपसे कि मैं 100 रुपए में खरीदूंगा वो तो 100 रुपए में लेगा ही। तो आपने यहां जो शेयर के रेट कम हुए, 80 रुपए, 90 रुपए, 95 रुपए, जो भी हुआ, आपने खरीद लिया और उसको 100 रुपए में बेच दिए और इसका फायदा कमा लिया। तो ये जो हिंडनबर्ग जो कंपनी है, फर्म है, इसको शॉर्ट सेलर फर्म के रूप में ही जाना जाता है, और ये कहा जा रहा है कि शायद अदाणी ग्रुप के शेयर्स से फायदा उठाने के लिए इसने जानबूझ करके ऐसी रिपोर्ट दी है। आपने देखा ना, अदाणी ग्रुप के शेयर एकदम से भड़ाभड़ गिरने शुरू हुए, ये कहा जा रहा है कि इसने जानबूझ करके ऐसा किया है। तो बस थोड़ी सी इसके टर्मिनोलॉजी मुझे आपको बतानी थी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो दर में फिर से बढ़ोतरी की है, हर 2 महीने में मौद्रिक नीति आती है और इस पर हम लोग बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस पर ज़्यादा बताए जाने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी आपको मैं सजेशन के तौर पर ज़रूर ये कहूँगा कि रिज़र्व बैंक आपके सिलेबस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन के प्री में पूछा ही पूछा जाता है, एक न एक प्रश्न आता ही है इस पर से। अगर मेंस में भी कोई प्रश्न आ जाए तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, संभावित है कि मेंस में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इस टॉपिक की बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, और जो इनके रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जैसे आज के अखबारों में रिजर्व बैंक के इस स्टेटमेंट को भी बहुत प्रोमिनेंटली कोट किया गया है कि महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो दर में वृद्धि की है, और सोच करके देखिए कि पिछले कुछ ही महीनों में ये छठवीं बार वृद्धि है रेपो रेट में, और कहा गया है कि ताकि महंगाई नियंत्रण में आ सके। रिजर्व बैंक का मानना है कि महंगाई हमारी मुख्य चिंता है, तो बस आपको सोचना केवल यही है कि भैया रेपो दर बढ़ा देने से महंगाई कैसे नियंत्रित हो सकेगी, बस आप इस पर विचार करें। तो दोस्तों अब बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं दिव्य देवांश गौर सम दोरव राजस्थान से, नंदनी रावल अहमदाबाद से, हर्षद रंगलाल अडागे, रोहितास गुर्जर और दीपेश कुमार झा बिठौली बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।